أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الخامس من المرحلة السادسة في إثبات الصور النوعية. اس فصل کے اندر ایک اور جوہر کو ثابت کرنا ہے، وہ ہے صورت نوعیہ. اس کو کیسے ثابت کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ بالوجدان درک کرتے ہیں، ہر انسان حس کرتا ہے اس چیز کو، کہ جو اجسام خارج میں موجود ہیں وہ افعال کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں اور آثار کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں. اختلاف بدیہی امر ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. سوال اب یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو آثار و افعال کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، یہ اس اختلاف کا مبدا، علت و سبب کیا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ان اختلاف کا سبب بن رہی ہے؟ ایک سے ٹھنڈک صادر ہو رہی ہے، دوسری سے گرمی صادر ہو رہی ہے، تیسری سے کچھ اور آثار صادر ہو رہے ہیں. یہ آثار کا اختلاف ہونا کس کے سبب سے ہے؟ سوال یہ ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے جب ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جس مرکب ہے مادے کے ساتھ اور صورت جسمیہ کے ساتھ، پہلے ہم جسم کی تعریف میں پڑھ آئے ہیں، جا کر ثابت کیا ہے کہ ایک جسم تشکیل پاتا ہے کس سے؟ مادے سے، اور دوسرا جو صورت اس پہ آتی ہے وہ صورت جسمیہ اس کے اوپر آتی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ بندہ آ کر کہے کہ ان تمام اختلافات کا سبب مادہ ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ وہ افعال کے اعتبار سے اختلاف ہو یا آثار کے اعتبار سے اختلاف ہو، یہ فعلیت رکھتے ہیں اور مادے کے اندر کسی بھی قسم کی فعلیت موجود نہیں ہوتی. عرض کیا تھا کہ مادہ فلسفے میں کیا ہے؟ استعداد محض کا نام ہے، اس کے اندر فعلیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جو آثار ہوتے ہیں وہ فعلیت رکھتے ہیں، مثلا گرمی کا ہونا، ٹھنڈک کا ہونا، تعقل کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فعلیت رکھتی ہیں، تشخص رکھتی ہیں اپنا. پس نہیں ہو سکتا کہ جو چیز فعلیت نہ رکھتی ہو وہ سبب و علت بن رہی ہو ایسے آثار کا کہ جو فعلیت رکھتے ہوں. پس مادہ سبب نہیں ہے. اب کوئی بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مادہ تو آثار کے اختلاف کا سبب نہیں ہے، صورت جسمیہ ہے. صورت جسمیہ کیا تھا؟ یعنی جب جسم کے بارے میں کہا، جسم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہ جس کے اندر ابعاد ثلاثہ موجود ہوں، ابعاد ثلاثہ رکھتا ہو، ابعاد ثلاثہ کو فعلیت دینے کے لیے صورت جسمیہ کی ضرورت ہے. یعنی صورت جسمیہ آ کر اس کے ابعاد ثلاثہ معین کرے گی. کوئی بندہ اگر کہتے ہیں یہ صورت جسمیہ کہ جو جسم کو آ کر جسم بنا رہی ہے، یہی صورت جسمیہ سبب بن رہی ہے کہ ہر جسم کے آثار مختلف ہوں. یہی صورت جسمیہ انسان کے آثار کو جدا کر رہی ہے حیوان کے آثار سے، نباتات کے آثار سے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ صورت جسمیہ بھی ان اختلافات کا سبب نہیں ہے. क्यों? इस वजह से के सूरत जिस्मिया तमाम अजसाम के अंदर मुश्तरक है। सूरत जिस्मिया क्या है? यानी जो फेलियत अता करे, किस एतबार से? तूल, अर्ज और उम्र के एतबार से। जिस मादे की हालत में से बोदी रखने की सलाहियत तो रखता है, लेकिन से बोदी बनता नहीं है। से बोदी कब बनता है? थ्री डायमेंशनल कब होता है? जहाते सलासा कब उसके अंदर आती है? जब सूरत जिस्मिया इसके ऊपर तारी होती है। सूरत जिस्मिया आकर इसमें तूल और अर्ज उम मुयन कर देती है। दुरुस्त है? तो फरमाते हैं ये सूरत जिस्मिया तो हर एक के अंदर मुश्तरक है, जो भी जिस्म होगा, क्योंकि हर जिस्म जो है वो तूल अर्ज व उम का रखता है। बस जो भी तूल अर्ज व उम का रखता है, इसका मतलब है कि वो सूरत जिस्मिया रखता है अपने अंदर। और सूरत जिस्मिया एक ही हकीकत है, उसकी हकीकतें मुख्तलिफ नहीं है। बस जब सूरत जिस्मिया तमाम अजसाम के अंदर मुश्तरक है, तो मुश्तरक चीज से मुख्तलिफ आसार कैसे सादिर हो सकते हैं? अगर सूरत जिस्मिया मनशाए आसार होती तो फिर इससे एक ही असर सादिर होता। इंसान से भी वही सादिर होता कि जो हैवान से सादिर हो रहा है, हैवान से भी वही सादिर होता जो नबातात से सादिर हो रहा है और जमादात से, क्योंकि हर एक के अंदर सूरत जिस्मिया एक ही माना के अंदर है, वहां सूरत जिस्मिया मुख्तलिफ नहीं है। पस इस एतबार से सूरत जिस्मिया भी आसार के इख्तिलाफ का सबब नहीं हो सकती, क्योंकि मुश्तरक है। फरमाते हैं पस जब ना मादा इख्तिलाफ का सबब है, ना सूरत जिस्मिया इख्तिलाफ का सबब है, तो बस कोई ऐसी चीज है इस जिस्म के अंदर के जो इन इख्तिलाफ आसार व अफआल के इख्तिलाफ का सबब बन रही है, और वो क्या है? उसको सूरत नौइया कहते हैं। और ये सूरत नौइया जौहर है। क्यों? क्योंकि जौहर के आसार का आसार की इल्लत भी जौहर ही हो सकती है, अरज नहीं हो सकती। बस इस तरीके से आकर सूरत नौइया को साबित करते हैं। देखें इमारत को, अल अजसामुल मौजूदा फिल खारिज तख्तलिफ इख्तिलाफन बैयनन मिन हैसुल अफआल वल आसार। के अजसाम जो खारिज में मौजूद हैं वो अफआल व आसार के एतबार से वाजह इख्तिलाफ रखते हैं। वहाज़िहिल अफ़आल लहा मबदाउन जौहरीउन ला महाला। तो इन अफ़आल के लिए कोई मबदा व इल्लत जौहरी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अजसाम जौहर हैं तो इनके अफ़आल व आसार की इल्लत भी जौहर होनी चाहिए। वलैसा हुवल माद्दा अल उला, और ये मबदा व इल्लत व सबब मादे उला नहीं हो सकता। क्यों? ले अन्ना शअनहा अल कबूल वल इनफ़आल। क्योंकि मादे उला के बारे में हम पहले पढ़कर आए हैं कि जिसमें यह बात साबित की है कि ये फकत व फकत इस्तेदाद रखता है, दून अल फ़िल, इसके अंदर फ़ेलियत नाम की कोई चीज नहीं होती है, बस ये नहीं हो सकता। वलल जिस्मियतुल मुश्तरका, और ना ही वो जिस्मियत मुश्तरका हो सकती है, यानी सूरत जिस्मिया, जिस्मियत या सूरत जिस्मिया मुराद है। और मुश्तरका कह रहे हैं चूंकि अर्ज किया कि ये तमाम अजसाम के अंदर मुश्तरक होती है। फरमाते ये भी इल्लत व सबब नहीं हो सकती। क्यों? लिअन्नहा वाहिदतुन मुश्तरका, क्योंकि ये सूरत जिस्मिया तमाम अजसाम के अंदर मुश्तरक और वाहिद है। वहादिल अफआल कसीरतुन मुख्तलिफा, और ये अफआल जो है वो कसीर भी है मुख्तलिफ भी है, बस ये उसकी इल्लत नहीं बन सकती। फलाहा मबादिन मुख्तलिफा, बस हर एक अफआल व आसार के लिए मबादी मुख्तलिफा चाहिए। इंसान के जो आसार मुख्तलिफ हैं उसके लिए अलग मबदा चाहिए, حیوان کے اندر جو آثار مختلف ہیں اس کے لیے مبدا الگ چاہیے. ولو کانت ہاذہ المبادی اعراضا مختلفہ وجب انتہاء الی جواہر مختلفہ. اب یہ اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ جو مبدا ہوگا یہ اعراض نہیں ہو سکتے. اگر کوئی آ کر کہے کہ ان کا مبدا جو ہے وہ اعراض ہیں تو اعراض بدون جوہر نہیں ہو سکتے, اور ضروری ہے کہ وہ اعراض پلٹے کس کی طرف؟ جوہر کی طرف, یعنی بالآخر جوہر کی طرف جانا ہے. علت اصلی جوہر بنے گی, عرض علت اصلی ان اختلاف کا نہیں بن سکتی. کہتے ہیں کہ اگر یہ مبادی یعنی یہ علت یہ سبب جو افعال کے اختلاف کا سبب ہے یہ اگر اعراض ہوں اعراض مختلفہ ہوں تو وجب انتہا اوہا الا جواہر مختلفہ, تو بالآخر ان کو منتہی ہونا ہے, واجب ہے ان کے لیے کہ وہ جواہر مختلفہ کی طرف منتہی ہوں. وَلَيْسَتْ هِيَ الْجِسْمِيَا, صورت جسمیہ ایک ہی جوہر تھا اس کے اندر وہ تو ہو نہیں سکتا. لما سمعتا من اشتراکہا بین الجمیع, کیونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ صورت جسمیہ مشترک ہے سب کے اندر, پس یہ مبادی نہیں مبدا نہیں بن سکتی آثار و افعال کے اختلاف کا. کون ہے وہ؟ وہی جواہر متنوعہ تتنوع بہ الاجسام, وہ جواہر ہیں کہ جس کے ذریعے اجسام متنوع ہوتے ہیں, اور ان جواہر کو کہ جس کے ذریعے اجسام متنوع ہوتے ہیں تسمى الصور النوعیہ, اس کو صور نوعیہ کہا جاتا ہے, صورت نوعیہ کہا جاتا ہے. صورت نوعیہ ہے کہ جو آ کر انسان کے اندر تعقل کا اثر لے کر آتی ہے, ذہک کا اثر لے کر آتی ہے, اور صورت نوعیہ ہے کہ جو پانی کے اندر ٹھنڈک کا اثر لے کر آتی ہے اور آگ کے اندر گرمی کا اثر لے کر آتی ہے. صورت نوعیہ ہے وہ, نہ تو مادہ ہے نہ ہی صورت جسمیہ ہے. یہ استدلال تھا صور نوعیہ کے بارے میں. تتمہ کے اندر یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جواہر مادیہ کے جو نو نو بنتے ہیں صور نوعیہ کے ذریعے, پہلی چیز کے جو بنتی ہے ان سے وہ کیا ہے؟ وہ عناصر ہیں, اور پھر عناصر سے پھر آگے کیا بنتے ہیں؟ دوسرے اجسام بنتے ہیں. یہ بیان کرتے ہیں. اول ما تتنوع الجواہر المادیتو بعد الجسمیت المشترکہ, پہلی وہ چیز کہ جو جسم جسمیت مشترکہ کے بعد جواہر مادیہ کو متنوع کرتی ہے, یا جواہر مادیہ متنوع ہوتے ہیں, وہ کیا ہے؟ انما ہوا بالصور النوعیہ التي تتكون بها العناصر, یہ وہ چیز ہے کہ جو صور نوعیہ کے ذریعے متنوع ہوتے ہیں, یعنی جواہر مادیہ میں سے سب سے پہلی جو چیز متنوع ہوتی ہے وہ صور نوعیہ کے ذریعے, وہ کیا ہے؟ التي تتكون بها العناصر, صور نوعیہ کے جس کے ذریعے عناصر متکون ہوتے ہیں, متکون ہیں یعنی عناصر ہیں کہ جو متکون ہوتے ہیں صورت جسمیہ کے بعد سب سے پہلے. ثم العناصر, عناصر مواد لصور اخرى تلحق بها, پھر یہ عناصر مثلا آگ مٹی پانی جو کہ چار عناصر قدیم فزکس کے اندر عناصر شمار ہوتے تھے, یہ عناصر پھر کیا ہیں؟ مادہ بنتے ہیں دوسری صورتوں کے لیے, کہ مٹی آگ کے ذریعے پھر ایک نئی صورت خلق ہوتی ہے اور ایک نئی چیز موجود وجود میں آتی ہے صور اخرا کے جو اس کو لاحق ہوتے ہیں. وکان القدما من علماء الطبیعہ یعدون العناصر اربعہ, قدیم فزکس کے اندر علماء عناصر کو چار سمجھتے تھے. وَأَخَذَ الْإِلَاهِيُونَ ذَلِكَ أَصْلًا مَوْزُوعًا, اور الٰہیون نے یعنی فلاسفر نے اس بات کو کہ عناصر چار ہیں اصل موضوعی کے عنوان سے قبول کیا. اصل موضوعی کے بارے میں وضاحت کی ہے, کیا ہے اصل موضوعی؟ گھڑی ہوئی اصل نہیں ہے, کیا ہے؟ यानी ये बात फिजिक्स की है, फिजिक्स वालों से उधार लेकर हमने फलसफे में उसके नतायज से बहस करनी है, तो लिहाजा ये असल मौजूई है। वकद अनहा अलबाहसून अखीरन इलामा यकरबु मिन मिआ व बिजआ उनसोर, फरमाते लेकिन आजकल के दौर में तहकीक करने वालों ने इसको कहां तक पहुंचा दिया है, 100 के करीब, 100 से ज्यादा। मिआ व बिजआर, बिजआ यानी चंद, यानी जैसे हम कहते हैं ना 100 से कुछ ज्यादा, ये बिजआ उसके लिए आता है कि 100 से कुछ ज्यादा अनासिर तक पहुंचा दिया, जो तकरीबन सुना है 120 136 को इस तादाद तक बयान करते हैं इन अनासिर को। ये थी फसले खामिस। आखिरी फसल के जो इसमें बयान करनी है इस दर्स के अंदर वो है ये छठी फसल के अल-फसलु सादिस मिन अल-मरहलत सादिसा फी तलाज़ुमिल माद्दत व सूरा, ये बात साबित करनी है कि मादा व सूरत मुतलाजिम है, ना मादा सूरत के बगैर रह सकता है और ना ही सूरत मादे के बगैर रह सकती है। फरमाते हैं कि मादा सूरत के बगैर नहीं रह सकता, इंतहाई बात वाजे है। क्यों? इस वजह से कि मादा इस्तेदाद महज का नाम है, मादा खारिज में वजूद रख ही नहीं सकता कि जब तक वो किसी फेलियत वाली चीज के साथ ना हो, और वो सूरत है। सूरत है कि जो मादा के वजूद को हिफ्ज रखती है और उसके तवस्सुत से मादा खारिज में आता है, वा इल्ला अगर मादा सूरत से खाली होकर खारिज में आना चाहे तो कभी भी खारिज में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि खारिज फेलियत का नाम है और मादा फेलियत नहीं रखता, बस जो फेलियत नहीं रखता वो फेलियत के मैदान में नहीं आ सकता, बस उसको हतमन सहारे की जरूरत है, वो सहारा उसका सूरत है, बस इस एतवार से मादा कभी सूरत से खाली नहीं रह सकता। और सूरत जो है ये लाजिम है मादे को, इसकी वजह क्या है, इसकी दलील क्या है, उसकी दलील ये देते हैं कि हम खारिज में तजर्बे के जरिए, हिस के जरिए इस बात को देख रहे होते हैं कि इस आलम के अंदर तगैयुर व इन्फ़िआल मौजूद है, हर चीज मुतगैयर है, हर चीज इन्फ़िआल पजीर है, कुछ किसी ना किसी चीज को कबूल कर रही है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो नबात हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, किसी भी सूरत में मौजूद हो तो वो इन्फ़िआल रखती है, वो तगैयुर रखती है, तब्दीली उनके अंदर मौजूद है। फरमाते हैं कि तब्दीली अगर इनके अंदर आ रही है, दुरुस्त है, मसलन आप और मैं इस वक्त फेलियत रखते हैं, इंसान की सूरत में है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, तब्दीली पैदा हमारे अंदर हो रही है, बचपन में कुछ और होते हैं, जवानी में फिर हमारे अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं, फिर क्या है बुढ़ापे के अंदर तब्दीलियां आती हैं, बहुत सारी तब्दीलियों से गुजरते हैं हम। ये जो तब्दीलियां आ रही हैं ये तब्दीलियां तब आपके अंदर आएंगी कि जब आपके अंदर मादा मौजूद होगा, अगर मादा मौजूद ना हो तो उनके अंदर तब्दीली मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन्फ़िआल किसके अंदर पाया जाता है, मादे के अंदर, क्योंकि आपको बताया कि मादा है कि जो इस्तेदाद रखता है, वाइला सूरत फेलियत का नाम है, इस्तेदाद का नाम नहीं है। इसी वजह से मुजर्रदात के बारे में कहा जाता है कि चूंकि मुजर्रदात सूरत महज हैं, उनके अंदर मादा नाम की चीज नहीं पाई जाती, इसी वजह से कहते हैं कि वो क्या हैं, तगैयुर नहीं रखते, वो साबित रहते हैं, और तगैयुर को कबूल भी नहीं करते, तकामुल उनके अंदर नहीं पाया जाता। तकामुल किसके अंदर है, इंसान के अंदर है, क्यों है, क्योंकि मादा रखता है, कबूल की सलाहियत मादे के अंदर पाई जाती है, सूरत में नहीं पाई जाती। बस जब हम इन तमाम आलम के अंदर, इस तमाम अशिया के अंदर तगैयुर को देखते हैं, बस हमें पता चलता है कि ये मुतगैयर नहीं हो सकते मगर उस वक्त जब इनके अंदर मादा मौजूद हो, बस मालूम हुआ कि सूरत भी बगैर मादे के नहीं रह सकती, क्योंकि सूरत में तकामुल पाया जाता है और तकामुल बगैर मादे के मुमकिन नहीं है। बस इस तरीके से ये एक दूसरे के मुतलाजिम हैं। फरमाते हैं अलमादतुल उला व सूरत मुतलाजिमान, मादा व सूरत मुतलाजिम हैं, यानी एक दूसरे को लाजिम है, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। ला तनफक को एहदाहुमा अनिल उखरा, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अम्मा अनल मादा ला ततअर्रा अनिस सूरा, मादा सूरत से जुदा नहीं हो सकता या खाली नहीं हो सकता, आरी नहीं हो सकता सूरत से। फल अनल मादतल उला हकीकतुहा अन्नहा बिलकुवा मिन जमी इल जिहात, क्योंकि मादा उला की हकीकत यह है कि वो तमाम जिहाद से बिलकुवा है, यानी उसके अंदर इस्तेदा, उसके अंदर फेलियत नाम की कोई चीज नहीं है। फलातू जद इल्ला मुतकव्वमतन बेफिअलियतिन जौहरियतिन मुत्तहिदतिन बिहा, और ये मादा मौजूद नहीं हो सकता मगर मुतकव्वम के साथ कि जो मुतकव्वम बिलफिअलियत हो, या मादा जो है मुतकव्वम बिलफिअलियत होता है यानी फिअलियत के जरिए क़वाम पाता है, वो फिअलियत के जो जौहरी हो और मुत्तहिद हो मादे के साथ। इज़ ला तहक्कुक़ अल मौजूदिन इल्ला बिफ़िलियतिन, चूंकि जो भी चीज मौजूद है वो फ़िलियत रखती है, मादा अगर मौजूद होना चाहता है तो उसको फ़िलियत के होना जरूरी है। वल जौहरुल फ़िली अल्लज़ी हाज़ा शानो, और जौहर जो कि फ़िली है और जिसकी शान ये है कि वो मौजूद हो, वह सूरा वह सूरत है, यानी फ़िलियत खासा है सूरत का। फ़ाइज़न अल मतलूब साबितुन, पस हमारा मतलूब साबित हो जाता है कि मादा बगैर सूरत के मौजूद नहीं हो सकता, चूंकि मौजूद फ़ेलियत का नाम है और फ़ेलियत सूरत के जरिए आती है, मादे के जरिए नहीं आती। वम्मा अन्न सूरत अल्लती मिन शानिहा अन तुकारिन अल मादा ला ततजर्रद अन्हा, और ये जो कहा कि सूरत की शान ये है कि वो मादे के मुकारिन होती है और मादे से कभी जुदा नहीं होती और उससे खाली नहीं होती, उसकी वजह क्या है? फरमाते हैं फले अन्न अशिया अन मिन अल अनवा अल्लती यनालो अल हिस व तजरबा, हमारी हिस हमारा तजरबा जिस चीज को पाता है वो ये है कि अनवा में से कोई भी चीज ला यखलू मिन कुव्वत तगैयुर व इमकान अल इन्फ़िआल, कि ये चीज जो कोई भी चीज जो है वो तगैयुर से और इन्फ़िआल के इमकान से खाली नहीं है, हर चीज तगैयुर पजीर है, हर चीज इन्फ़िआल पजीर है। वहाजा असल उन मौजू उन माखूज उन मिनल उलूम तबीया, फरमाते हैं ये फिजिक्स ही उलू तजर्बी उलूम से बेउनवान असल मौजूई हमने लिया है। क्या हमने लिया है असल मौजूई के उनवान से? कि तमाम आलम मादा तगैयुर रखता है, इन्फ़िआल की सलाहियत रखता है, ये हमने बेउनवान असल मौजूई तजर्बी उलूम से लिया है। वमा फीहिल कुव्वत वल इमकान, जब ये बात साबित हो गई उलूम तजर्बी में कि तमाम अजसाम मादी जो हैं वो तगैयुर रखते हैं, तगैयुर पजीर हैं, तो कुव्वा यानी इस्तेदाद वल इम्कान और उसका मुमकिन होना कि वो इन्फ़िआल को कबूल करे, तगैयुर को कबूल करे, ला यखलू मिन मादतिन, तो इसका मतलब है कि फिर मादे से ये खाली नहीं हो सकते। फ़ाइज़न अल मतलूब साबितुन, बस मतलूब हमारा यहां भी साबित हो जाता है कि आलम के जो मौजूद है उसमें तगैयुर है और ये तगैयुर बेदूने मादा नहीं हो सकता, बस सब की सब चीजें क्या है? मादा रखती हैं, बस सूरत मादे की मोहताज है, उसके हमराह ही रहेगी चूंकि इसके अंदर तकामुल होना है और तकामुल बगैर मादे के नहीं हो सकता। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।